सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमिऊणे लाहिरिये तिहुवनभवने कमङ्गलप्पयिवे कलिकलुसफुसणगवनसणे सुत्तं पोसासियं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी हमारा स्पर्शनानुगम का विषय शुरू हुआ है और ये जो चौथी पुस्तक है उसने में स्पर्शनानुगम में पृष्ठ संख्या 142 पर हम आ गए। जैसे हमने हर बार देखा था, कोई भी विषय हम सीखते हैं तो पहले उसमें निक्षेप बताते हैं। कौन कौन से निक्षेप याद है प्रेरणा पे? निक्षेप कौन कौन से? हाँ, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। ये कॉमनली तो चार तो होते ही है, परंतु छह अगर देखेंगे तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र, काल और भाव। इस तरह से छह प्रकार के निक्षेप होते हैं। निक्षेप यानी जिस वस्तु के बारे में हमने समझना है उस वस्तु में हम कुछ भेद करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं निक्षेप। यहाँ स्पर्शन की बात हो रही है, क्षेत्र की बात तो हमने देखी। जीव का क्षेत्र जब हमें देख रहे थे तो जीव की अवगाहना है, उसका वॉल्यूम जो है जीव का, उससे वो कितने क्षेत्र में रहता है, उस एरिया से उसको गुणा करने पर उसका क्षेत्र निकला था। अब यहाँ स्पर्शन की बात हो रही है। स्पर्शन की तो अभी समझाएंगे, कौन सा स्पर्शन, उसका अर्थ क्या है, उसकी बात भी आ जाएगी। तो अभी हमने जो मंगलाचरण देखा था उसमें एलाचार्य को नमस्कार करके स्पर्शनानुगम आश्रित सूत्रों का अर्थ कहने की प्रतिज्ञा की है। ये एलाचार्य वीरसेन जो धवलाकार जो है उनके शिक्षा गुरु थे। कुंकुंद आचार्य का भी एक नाम एलाचार्य है, वो यहाँ नहीं है। और आचार्यों के उपाचार्यों को भी एलाचार्य कहते हैं। एलाचार्य एक पदवी भी है, जैसे पंत प्रधान और उप पंत प्रधान, हाँ वैसे आचार्य और उपाचार्य उनको भी एलाचार्य कहते हैं। तो ये तो हमने कल देखा था। अब यहाँ हम 142 पृष्ठ पर आए हैं और उसमें शंकाकार पूछता है, वहां से शुरू करते हैं। इस तीन प्रकार के शरीर की स्पर्शन या संज्ञा कैसे है? कौन से शरीरों की बात चल रही है? देखो पहले हमने देखा था कि नाम स्पर्शन यानी स्पर्शन ऐसा नाम कहना, वो नाम स्पर्शन हुआ। स्थापना में किसी चीज में हम स्थापना कर देते हैं तो उसको हम स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे मूर्ति में हम भगवान की स्थापना करते हैं तो उसको स्थापना निक्षेप कह देते हैं, वैसे किसी चीज में ये स्पर्शन ऐसा कह देना उसको स्थापना स्पर्शन कहेंगे। अब यहाँ द्रव्य स्पर्शन की बात हो रही है। द्रव्य स्पर्शन, द्रव्य यहाँ किसको कहते हैं कि अभी वर्तमान में तो वो पर्याय नहीं है, फिर भी भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय को वर्तमान में ही उस द्रव्य को वही नाम देना, उसको कहते द्रव्य निक्षेप। जैसे अभी श्रेणिक राजा वर्तमान में नरक में है और फिर हमको उसको नारकी नहीं कहकर भूतकाल की अपेक्षा उसको श्रेणिक राजा कह देना, या भविष्यकाल की अपेक्षा उनको अपने पहले प्रथम तीर्थंकर कह देना, इसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप। वैसे यहाँ द्रव्य स्पर्शन की बात। अभी द्रव्य निक्षेप में जो हम करते हैं तो उसमें दो भाग करते हैं, आपको याद होगा पहले हमने बहुत विस्तार से देखा था, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप में अब जिस संबंधी अपनी बात चल रही है, अभी यहाँ स्पर्शन संबंधी बात है, तो स्पर्शन संबंधी जो जिनागम है, प्रावृत है, उसका ज्ञाता जीव, उसको जानने वाला जीव, परंतु वर्तमान में वो उसमें उपयोग नहीं है उसका। वर्तमान में अन्य कुछ विषय वो सीख रहा है या अन्य में उसका उपयोग है, तो उसको कहते हैं आगम द्रव्य स्पर्शन कहेंगे। नो आगम द्रव्य स्पर्शन में अन्य जो कुछ कुछ, तो उसमें क्या क्या आता है नो आगम में, तो हमने देखा था ज्ञायक शरीर, भावी या भव्य और तद व्यतिरिक्त, ऐसे तीन भेद इसके देखे थे। तो ज्ञायक शरीर यानी जो आगम को जानने वाले जीव का शरीर, तो यहाँ शरीर को भी द्रव्य स्पर्शन कह रहे हैं। तो ये कौन सा शरीर, एक तो वर्तमान वाला शरीर, एक भूतकाल वाला शरीर, और ये अगले भव में जो धारण करेगा वो शरीर, उस शरीर को भी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य स्पर्शन कहेंगे, उसकी बात यहाँ चल रही है। उस पर शंकाकार पूछता है ये तीनों ही शरीरों को स्पर्शन ये कैसे कहा, शंका ख्याल में आई अभी, इन तीन शरीरों की बात चल रही, उसका समाधान। स्पर्शन प्रावृत के साहचर्य से, प्रावृत यानी आगम शास्त्र, ओके, समय सार, समय प्रावृत कहते उसको, समय पाहुड़, पाहुड़ कहो प्रावृत कहो, हम तो स्पर्शन संबंधी, अभी ये स्पर्शन क्या है उसकी चर्चा आएगी आगे, स्पर्शन संबंधी जो शास्त्र है जिनागम है, उसका ज्ञाता जीव वो इस शरीर के साहचर्य ने उसके सहचारी है, उसमें रहता है, उसके साथ है, यह शरीर उस जीव के साथ है जो जीव स्पर्शन संबंधी आगम का ज्ञाता है, इसलिए शरीर को भी यहां द्रव्य स्पर्शन कह दिया, नो आगम द्रव्य स्पर्शन। तो क्या कहते हैं, स्पर्शन प्रावृत के साहचर्य से उक्त तीन प्रकार के शरीर को भी स्पर्शन संज्ञा है, उसको भी स्पर्शन नो आगम द्रव्य स्पर्शन कह दिया। जैसे ये दृष्टांत हमने पहले भी देखा था, असी यानी तलवार से सहचरित पुरुष को असी, और धनुष से सहचरित पुरुष को धनुष संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जैसे वहां कथन आया था ना, यहाँ 100 तलवारें दौड़ रही है, या 1000 धनुष सभी खाने को यानी खाना खाने को बैठे हैं, ऐसा कहेंगे तो उसका अर्थ क्या है, इतने धनुषधारी लोग, 100 तलवारें दौड़ रही है ने, 100 तलवार वाले, तलवारधारी जो सैनिक है वो दौड़ रहे हैं, तो उसका उसमें उपचार कर देते हैं। वैसे यहाँ शरीर में जीव का साहचर्य देखकर शरीर को भी द्रव्य स्पर्शन कह दिया। ये तो ये गायक शरीर की बात हुई। अब ये जो भव्य या भावी वाला जो भेद है दूसरा, यहाँ तो शरीर की बात थी, भावी में किसकी बात है याद है आपको, जीव की। कौन सा जीव, जो अभी तो नहीं जान रहा है, अभी जान नहीं रहा है इसलिए उसको नो आगम कहा, परंतु वो भविष्य में जाकर जानने वाला है, तो उस जीव को अभी से नो आगम द्रव्य स्पर्शन कहेंगे हम। तो भविष्य काल में स्पर्शन विषयक शास्त्र के ज्ञायक को भव्य कहो या भावी कहो की बात, तो भव्य द्रव्य स्पर्शन कहते हैं। अब शंका, यह करेक्शन की है इस, अभी आगे जो भव्य शरीर वाले के लिखा है उसके बदले में ऊपर जो बात आई थी प्रश्न में उसी को दोहराते। देखो शंका क्या पूछता है, इस भविष्य काल में स्पर्शन विषयक शास्त्र के ज्ञायक के द्रव्य स्पर्शन यह संज्ञा कैसे है, यानी उस जीव को द्रव्य स्पर्शन क्यों कहते हैं जो भविष्य काल में जानने वाला है, उसका समाधान करते हैं। विवक्षित द्रव्य की पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्था, पूर्व यानी भूतकाल की अवस्था और उत्तर यानी भविष्य काल की अवस्था, आने वाली अवस्था, अवस्था का द्रव्य के साथ एकत्व पाया जाता है। ये द्रव्य की ही पर्याय है, द्रव्य वही का वही है, तो द्रव्य के साथ उसका एकत्व है। जैसे इंद्र बनाने के लिए लाए गए काष्ठ की इंद्र यह संज्ञा देखी जाती है। पहले हमने प्रस्थ का भी उदाहरण देखा था, प्रस्थ यानी कि लकड़ी में से कोई चीज बनानी है, तो बनाने के पहले उस लकड़ी को उस चीज के नाम से हम पुकारते थे, जैसे उसमें से कोई हमने गुड़िया बनाई तो उसको ये गुड़िया कह देना, लकड़ी को ही। ये कहाँ क्या, अभी कोई जंगल में जा रहे हैं लकड़ी काटने को, तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रस्थल आने जा रहा। प्रस्थ ने वो पहले तो अनाज लकड़ी का माप आता था ना, धान मापने का, उसको प्रस्थ कहते। इंद्र भी उसी के लिए कहते होंगे शायद ये। अब ये दो बातें हुई, एक ज्ञायक शरीर, दूसरा भेद भव्य वाला, और तीसरा तद व्यतिरिक्त, यानी शरीर और जीव के अलावा और अन्य जो कोई होगे उसको तद व्यतिरिक्त कहते। तो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य स्पर्शन सचित्त अचित्त और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है, यानी एक शास्त्र के ज्ञाता नहीं है, जीव भी नहीं और उसका शरीर भी नहीं है, परंतु अन्य कोई जो चीजें हैं तो उसमें कोई सचित्त है, कोई अचित्त है, और कोई दोनों का मिलावट ऐसे मिश्र है। जो सचित्त द्रव्यों का संयोग होता है वह सचित्त द्रव्य स्पर्शन कहलाता है। यहाँ द्रव्यों के संयोग को स्पर्शन कहा है, किसी का स्पर्श करना उसको स्पर्शन नहीं कहते हैं, क्योंकि अरूपी द्रव्य कैसे स्पर्श करेंगे एक दूसरे को, उसमें तो कोई स्पर्श गुण है नहीं है, फिर भी उनका संयोग होने को ही यहाँ स्पर्श कहते हैं, स्पर्शन। अचित्त द्रव्यों का जो परस्पर में संयोग होता है वह अचित्त द्रव्य स्पर्शन कहलाता है, और मिश्र द्रव्य स्पर्शन चेतन अचेतन स्वरूप छह द्रव्यों के संयोग से 59 भेद वाला होता है। अब कितने द्रव्य कितने हैं इस विश्व में? 6 द्रव्य हैं। तो उसके कॉम्बिनेशंस करेंगे हम, जीव का पुद्गल के साथ, जीव का धर्म के साथ, जीव का अधर्म के साथ, जीव का आकाश के साथ, जीव का काल के साथ, फिर पुद्गल का जीव के साथ, धर्म के साथ, अधर्म के साथ, आकाश के साथ, काल का साथ, फिर धर्म का भी ऐसा हर एक का ले लो। ये तो दो दो की जोड़ी, दो दो के संयोग हुए। अब तीन तीन का संयोग, जीव पुद्गल धर्म, फिर जीव पुद्गल अधर्म, जीव पुद्गल आकाश, जीव पुद्गल काल, ऐसे तीन तीन के भी जोड़ी करो, फिर पुद्गल के भी, इस तरह से कितने हो गए ऐसे संयोग, हाँ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? तो उसको कहते द्विसंयोगी कितने हो गए, तीन संयोगी कितने हो गए, चार संयोगी कितने हो गए, पांच संयोगी कितने हो गए, और छों के संयोग वाले कितने हो गए, कितने हो गए? एक होगा ना, छों का मिलकर एक होगा। तो ऐसे हर एक के कितने कितने हो गए वैसे कैसे निकालना, अभी हर एक की संख्या वेरिएबल है, तो उसके लिए यहाँ एक टेबल देकर समझाया। देखो हम पढ़ेंगे इसको, विशेषार्थ, किसी विवक्षित राशि के द्विसंयोगी त्रिसंयोगी आदि भंग निकालने के लिए, भंग यानी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो है उसको भंग कहते हैं, उसके लिए विवक्षित राशि प्रमाण से लेकर, अभी हमको 6 द्रव्यों की बात है तो 6 से लेकर एक एक कम करते हुए एक के अंक तक अंक स्थापित करना चाहिए। तो हम अभी 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे अंक स्थापित करेंगे। पुनः दूसरी पंक्ति में यानी उसके नीचे, उनके नीचे एक से लेकर विवक्षित राशि तक अंक लिखना चाहिए। ये हमने 6 से 1 तक लिखे, अभी उल्टे क्रम से लिखो, 6 के नीचे 1 लिखना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर उल्टे क्रम से लिखे, नीचे सीधे क्रम से वही संख्या फिर लिखी। अब पहली पंक्ति के अंकों को अंश या भाज्य, जिसको भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं मराठी में, ऊपर के वाले को अंश और नीचे की छेद कहते हैं ना, तो ऊपर के तो अंश हो गए, और दूसरी पंक्ति यानी अभी जो हमने नीचे पंक्ति लिखी उन अंकों को हार या भागहार कहते हैं, भाजक अपनी भाषा में, जिससे भाग दिया जाता है वो संख्या नीचे और जिसको भाग देना है वो संख्या ऊपर। यहाँ पहले भाज्यों के साथ अगले भाज्यों का और पहले भागहारों के साथ अगले भागहारों का गुणा करना चाहिए। अब हम क्रम से हम देखेंगे, पहले दो संख्या का हम अगर गुणाकार भागाकार करेंगे तो भाज्य और भाज्य का आपस में गुणाकार होगा, और भागार भागार का आपस में गुणा करेंगे तो 6 × 5 करेंगे तो नीचे 1 × 2 करेंगे और उसको उससे भाग देंगे। 6 × 5 = 30 होते हैं, और 1 × 2 = 2, तो 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगी। तो हमने 2 ले ना, तो द्विसंयोगी भंग कितने हो गए? तो कहते 15 हो गए। आप निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। हाँ हाँ, नीचे दिया है, फैक्टोरियल। अच्छा, तो जो मैथमेटिक्स नहीं जानते ना वो जान लो, इसको फैक्टोरियल कहेंगे। तो उसका कोई फॉर्मूला है आपके पास? ऐसे टोटल कितने निकलेंगे? हाँ। तो इसमें सिंगल वाले भी ले सकते हैं उसके साथ। अभी यहाँ हम संयोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगल या एक संयोगी जिसको कहते हैं ना, बिना संयोग वाला, वो भंग भी यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि हमको दो द्रव्यों का संयोग की बात कर रहे हैं, उसको छोड़कर यहाँ गिनेंगे हम। नहीं तो जब जब भंग निकालते हैं तो प्रत्येक को एक एक बार लेंगे, फिर दो दो को लेंगे, फिर तीन तीन को लेंगे, इस तरह से उसके भंग निकालते। अब यहाँ देखे, देखो पुनः भाज्यों के गुणनफल में भागहारों के गुणनफल का भाग देना चाहिए, जो इस प्रकार प्रमाण आवे उतने ही विवक्षित स्थान के भंग समझना चाहिए। विवक्षित स्थान का भंग है, अभी नीचे हमने दो लिखे ना, ऊपर चार और पांच का गुणा किया, नीचे एक और दो का, तो दो स्थान लिए, तो द्विसंयोगी भंग 15 निकलेंगे इसमें से। इस करण सूत्र गोमरसार कर्मकांड गाथा नंबर 799 के नियमानुसार छह द्रव्यों के संयोगी भंग इस प्रकार है। कर्मकांड गाथा 799 में हमने देखा था, ये तो हिंसा, ये उसके प्रकार थे ना, इंद्रिय संयम वगैरह, प्राणी संयम, उसमें एक इंद्रियों की हिंसा, दो इंद्रिय की हिंसा, तीन इंद्रिय की, चतुर इंद्रिय की, पंच इंद्रिय की, ये कायों की हिंसा, षट कायों की हिंसा, अकेले एक काय की, कोई पृथ्वी काय की होगी, आप काय की, इस तरह से उसमें किसी के मात्र एक इंद्रियों की हिंसा है, किसी को एक इंद्रिय दो इंद्रिय दोनों की है, किसी को एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय तीनों की है, तो वो कैसा निकालना है, उसके लिए भंग बताए थे। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी बता रहे हमें। तो छह द्रव्यों की संयोगी भंग छह द्रव्यों के इस प्रकार है। द्विसंयोगी, ये तो अभी हमने देखा था, 6×5 करना और नीचे 1×2, वो 15 आते हैं। त्रिसंयोगी में 6×5×4 और नीचे 1×2×3, वो 20 आएंगे, तो तीन तीन वाले संयोग 20 हो जाएंगे। चतुसंयोगी, जैसे हम अगर ए बी सी डी इस तरह से लिखेंगे तो ए बी सी डी एक भंग हुआ, अब बी को निकाल दो, ए सी डी ई दूसरा भंग हुआ, इस तरह से चतुसंयोगी कहते हैं उसको। तो 6×5×4×3 और नीचे 1×2×3×4, ये फिर 15 हो जाते हैं। देखो ये आसान है ना, देखो 6, 5, 4 और 3, इतना लंबा सब करने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4। अब ये 3 और 3 गए, 4 और 4 गए, हाँ, तो ये पहले 15 जैसे हमने निकाले थे वैसा ही आते हैं। नहीं, बराबर है, हाँ, ये पहले हमने निकाला था। और पंच संयोगी भंग देखो, अभी 6×5×4×3×2 और नीचे 1×2×3×4×5, ये 2 से 5 तक ऊपर नीचे सब चले जाएंगे आपस में, उसका अपवर्तन हो जाएगा और 6 रह जाएंगे। और षट संयोगी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर भी 1 से 6 तक और नीचे भी 1 से 6 तक, सब आपस में कैंसिल हो जाएगी, 1 हो जाएगा। अब सब संयोगी भंगों का योग यानी टोटल 57 हो जाते हैं, 15 और 20 और 15 और 6 और 1, 57 हो जाते हैं। इन 57 भंगों के अतिरिक्त, अब ऐसे ना, एक जीव के दूसरे जीव के साथ भी होगा, खाली हम एबीसीडी लेते हैं तो एक का एक के साथ कैसा होगा, संयोग नहीं हो सकता, परंतु यहाँ अनेक जीव है, हमने जीव जाति की अपेक्षा उसको एक गिना था, परंतु जीव अनेक है, तो एक जीव का दूसरे जीव के साथ जो संयोग है, संबंध है, उसको भी गिनेंगे। तथा पुद्गल का पुद्गल के साथ इस प्रकार दो भंग और भी संभव है, उन्हें मिलाकर 59 संयोगी भंग हो जाते। ये संयोगी भंगों की बात है, यह सिंगल हर एक को एक एक को रखना, जैसे जीव एक ही लेना, पुद्गल एक ही, उसको यहाँ नहीं गिनाया है, वो 6 भंग छोड़कर अन्य भंगों की बात की है, यहाँ अकेले संयोगों की बात की है। बिना संयोगी जो भंग होते हैं, प्रत्येक भंग जिसको कहते हैं, उनको यहाँ नहीं लिया है। दो जीवों का संबंध है, वहां जुड़ना ऐसा नहीं लेना, संयोग। अभी जीव का आकाश के साथ कैसे संयोग होता है? संयोग करते हैं, जुड़ जाना ऐसा नहीं, वो इकट्ठे रहना या इकट्ठा आना। अभी निगो जीव है इतने, एक ही शरीर में वो एक साथ रह रहे हैं। देखो, धर्मास्तिकाय आदि शेष चार द्रव्य अखंड एक एक ही होते हैं, अतः उनके इस प्रकार के एक ही द्रव्य के भीतर संयोगी भंग संभव नहीं है। जीव आदि छह द्रव्यों के पृथक पृथक छह भंग और होते हैं, जो असंयोगी होने से यहाँ ग्रहण नहीं किए हैं। अगर उनको ग्रहण करते, कोई भी छह चीजों में अगर हमको टोटल भंग निकालने, तो सिंगल सिंगल को गिनेंगे तो कितने हो गए, छह हो गए, तो छह और मिलाने पड़ेंगे। पहले हमने 57 निकाले थे और उसमें छह और मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 63। तो उसका निकालने का भी एक आसान तरीका है, छह चीजों हमने छह चीजें दी थी और उसमें आपस में या प्रत्येक भंग और सब मिलकर भंग सबकी टोटल निकालनी है तो कितने हो गए, आपको याद है अरविंद भाई फॉर्मूला? हाँ बोला। हाँ देखो, छह संख्या है ना, छह बातें हमने लिए, तो दो संख्या छह बार लिखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपस में गुणा करो उसको और उसमें से एक माइनस करो, उतने भंग हो गए। प्रत्येक भंग, द्विसंयोगी भंग, तीन संयोगी, चार संयोगी, पांच संयोगी और छह संयोगी। तो अभी ये आपस में गुणा करेंगे तो छह किसका अर्धच्छेद है मालूम है, 64 का। तो 64 माइनस एक करेंगे हम तो 63 आएंगे, तो सभी भंगों की टोटल 63 आएगी। उसमें से हमने वो प्रत्येक वाले छह नहीं लिए थे, तो 63 में से वो छह निकाल देते हैं प्रत्येक वाले, तो भी 57 आ जाते हैं। डायरेक्ट ये संख्या हम निकाल सकते हैं। और फिर वो जीव का जीव के साथ, पुद्गल का पुद्गल के साथ ये दो और मिला दिए तो 59 भंग हो गए। ये हमने ज्ञान मार्गणा के प्रकरण में लिए थे। जैसे स्वर और व्यंजन मिलकर 64 अक्षर होते हैं जिनवाणी के, तो 64 बार आपस में दो से गुणा करो तो इकट्ठी प्रमाण आता है और उसमें से एक माइनस करो, इतने तो ये सब जोड़ाक्षर वगैरह सब उसमें ले लेना। प्रत्येक संयोगी, हाँ प्रत्येक संयोगी अक्षर कितने हैं, द्विसंयोगी जैसे दो का जोड़ाक्षर है, तीन संयोगी, चार संयोगी, ऐसे 64 संयोगी तक कितने हैं टोटल भंग, तो इकट्ठी माइनस वन। इकट्ठी मालूम है किसको कहते हैं, पनट्टी तो सुना है, 65,000 बादल का ऊपर का वर्ग, पनट्टी का वर्ग है बादल और बादल का वर्ग इकट्ठी। अब यहाँ ये उन्होंने भंग बता दिया। अब शेष द्रव्यों का आकाश द्रव्य के साथ जो संयोग है वह क्षेत्र स्पर्शन कहलाता है। क्षेत्र को स्पर्शन, आकाश को क्षेत्र कहेंगे, क्षेत्र स्पर्शन कहलाता है। शंका, अमूर्त आकाश के साथ शेष अमूर्त और मूर्त द्रव्यों का स्पर्श कैसे संभव है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अवगाहक भाव की ही उपचार से स्पर्श संज्ञा है। क्या कहते हैं, अवगाह्य, जिसको अवगाहना दी जाती है वो अवगाह्य, और अवगाहक यानी अवगाहना देने वाला, दोनों का आपस में संबंध होना या उसमें वो अवगाह्य और अवगाहपना होना, यही स्पर्श कहलाता है, उसी को स्पर्श कहते हैं। जैसे एक रूम में हमने देखा ना, हमने एक ब्लू लैंप लगाया, उसका प्रकाश पूरे रूम में, और दूसरा एक येलो लैंप, उसका भी प्रकाश, तो दोनों प्रकाशों ने एक दूसरे को अवगाहना दी, तो हम क्या कहेंगे, स्पर्श कहेंगे। वहाँ वैसे एक जीव ने दूसरे जीव को अवगाहना दी, वो उसको स्पर्श संज्ञा हो जाएगी, उसी को यहाँ स्पर्श कहा है। अथवा सत्व प्रमेयत्व आदि के द्वारा मूर्त द्रव्य के साथ अमूर्त द्रव्यों की परस्पर समानता होने से भी स्पर्श का व्यवहार बन जाता है। सत्व ने सत्ता अस्तित्व गुण है, प्रमेयत्व गुण है, ये और भी जो सारे सामान्य गुण हैं, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व सब समझ लेना उसमें। तो उनकी मूर्त द्रव्य हो या अमूर्त द्रव्य हो, उनमें तो ये गुण समान रूप से पाए जाते क्योंकि ये सामान्य गुण है, इसलिए भी ये समानता को ही वहाँ स्पर्श ऐसा व्यवहार वहाँ किया जाता है। अब अगली बात करेंगे, क्षेत्र स्पर्शन की बात की थी, अभी काल स्पर्शन की बात करते हैं। काल द्रव्य का अन्य द्रव्यों के साथ जो संयोग है उसका नाम काल स्पर्शन है। आकाश का जो संयोग अन्य के साथ है उसको क्षेत्र स्पर्शन कहा। अब काल का जो अन्य द्रव्यों के साथ है संयोग उसको काल स्पर्शन कहेंगे। यहाँ यद्यपि अमूर्त काल द्रव्य के साथ शेष द्रव्यों का स्पर्शन नहीं है, तथापि परिणमित होने वाले शेष द्रव्य परिणामत्व की अपेक्षा काल से स्पर्शित है। वहाँ अवगाह्य अवगाहक का संबंध लिया था, अभी यहाँ परिणमित होना और परिणमन में निमित्त होना, ऐसा ही यहाँ संबंध लेना। इस प्रकार से उपचार से काल स्पर्शन कहा जाता है। शंका, क्षेत्र स्पर्शन और काल स्पर्शन ये दोनों स्पर्शन द्रव्य स्पर्शन में क्यों नहीं अंतर्भूत होते? द्रव्य स्पर्शन में उनको क्यों नहीं लिया? आप कह सकते हैं क्यों नहीं लिया? द्रव्य स्पर्शन में हम क्या लेते हैं? एक ही द्रव्य की भूत भविष्य पर्याय, और वहाँ द्रव्य स्पर्शन में उसको आगम का ज्ञाता जीव और उसके साथ वाले जो कुछ है उसको द्रव्य स्पर्शन में लिया था। अब यहाँ अन्य द्रव्यों की बात चल रही है, क्या है? अब देखते हैं समाधान क्या करते हैं। ऐसी शंका पर उत्तर देते हैं कि क्षेत्र स्पर्शन और काल स्पर्शन द्रव्य स्पर्शन में अंतर्भूत नहीं होते, क्योंकि द्रव्य से द्रव्य के एक देश का कथनचित भेद पाया जाता है। द्रव्य स्पर्शन में हम पर्याय की अपेक्षा से जो भूत और भविष्य पर्याय वो द्रव्य के ही अंतर्भूत है, इसलिए उसको तो द्रव्य कहा था या उसके संयोग में आने वाली चीजों को, परंतु यहाँ ये भिन्न द्रव्य है इसलिए इसको उसमें नहीं लिया है। अब भाव स्पर्शन की बात करेंगे। देखो, नाम स्पर्शन, स्थापना स्पर्शन, द्रव्य स्पर्शन, क्षेत्र स्पर्शन, काल स्पर्शन, अब भाव स्पर्शन। भाव जब जब बात आती है तो उस पर्याय से परिणत की बात चलती है। द्रव्य में ज्ञाता जीव परंतु वर्तमान में उपयोग से रहित लिया। भाव स्पर्शन में भी दो भेद करेंगे, आगम भाव स्पर्शन और नो आगम भाव। आगम में ज्ञाता जीव और उपयोग उसमें है, उसी में, उसको आगम भाव लेंगे, और नो आगम में ये ज्ञाता नहीं, अभी दूसरे की बात करेंगे, जीव के अलावा और जो कुछ है उसकी। देखो, भाव स्पर्शन आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है। स्पर्शन विषयक शास्त्र के ज्ञायक और वर्तमान में उसमें उपयुक्त जीव को आगम भाव स्पर्शन कहते हैं। जब जब भाव निक्षेप की बात है तो वर्तमान में उस पर्याय से परिणत की बात करते हैं। अब स्पर्श गुण से परिणत पुद्गल द्रव्य को नो आगम भाव स्पर्शन कहते हैं। नो आगम में यानी आगम का ज्ञाता नहीं है, ऐसे अन्य द्रव्यों की बात करेंगे यहाँ, तो इसलिए पुद्गल लिया और वो स्पर्श गुण से परिणत लिया। ज्ञायक ने जीव, हाँ ज्ञायक लिया, ज्ञायक शरीर नहीं लिया, ज्ञायक शरीर में ज्ञायक का शरीर लिया था। अब यहाँ ज्ञायक ने जीव को ही कहते भाव आगम, ये आगम भाव स्पर्शन कहेंगे। इन उक्त छह प्रकार के स्पर्शनों में से ये जो अभी हमने निक्षेप देखे छह, उसमें से यहाँ पर जीव द्रव्य संबंधी क्षेत्र स्पर्शन से प्रयोजन है। जीव द्रव्य संबंधी क्षेत्र स्पर्शन यानी क्षेत्र स्पर्शन यानी आयोग आकाश के साथ जो उसका संयोग है उसकी बात की थी, तो जीव द्रव्य संबंधी जो आकाश का क्षेत्र होगा उसको यहाँ क्षेत्र स्पर्शन कह रहे हैं। यानी यहाँ जो हम स्पर्शन की बात करेंगे तो वो जीव द्रव्य संबंधी क्षेत्र स्पर्शन से यहाँ हम सभी बातें करेंगे। हर बार उसको जीव द्रव्य संबंधी क्षेत्र स्पर्शन ऐसा नहीं कहेंगे, अकेले स्पर्शन ऐसा ही कह देंगे। अब कहना किसको? तो जो भूतकाल में स्पर्श किया गया और वर्तमान में स्पर्श किया जा रहा है वह स्पर्शन कहलाता है। यह ना क्षेत्र स्पर्शन की बात है, तो जीव द्रव्य जो है उसका जो भूतकाल में जिस आकाश के साथ उसका संयोग यानी जितने क्षेत्र में वो रहता था या रहता जो कुछ था उसका उसको उसको भी कहेंगे स्पर्श, और जो वर्तमान में रह रहा है उसको भी कहेंगे। स्पर्शन के अनुगम को स्पर्शनानुगम कहते हैं। अनुगम यानी अकॉर्डिंगली, हमने पहले देखा था ना ये जिनेंद्र भगवान के उपदेश के अनुसार कथन करना है यहाँ, उसको अनुगम कहा था, अनुवाद भी उसको कहते हैं। उससे अर्थात स्पर्शनानुगम से, आपको लगेगा यहाँ दंड क्यों दिया, स्पर्शनानुगम से कहकर वाक्य पूरा ही नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ सूत्र के एक एक शब्द को लेकर अपनी चर्चा चल रही है। देखना यह सूत्र कहाँ शुरू किया था हमने, पहला ही सूत्र देखो, कोसनानुगमेण, ऐसे ना, यानी स्पर्शनानुगम की अपेक्षा यानी स्पर्शनानुगम से आगे जो कथन कर रहे हैं। तो ये अभी तक तो उसका अर्थ हुआ, सूत्र के पहले शब्द का अर्थ यहाँ हुआ, इसलिए यहाँ ये कह दिया। अब दूसरा जो है क्या है, सूत्र में दूसरा क्या लिखा है, स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। अब निर्देश को किसको कहना वो कहेंगे, निर्देश, कथन और व्याख्यान, ये तीनों एकार्थक नाम है। कथन करने को ही निर्देश कहते हैं। वह निर्देश प्रकृति के निर्देश के समान दो प्रकार का होता है। अभी तक जो हमने निर्देश की बात देखी थी, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश, तो वो दो प्रकार का होता है। ओघ, पिंड और अभेद, ये सब एकार्थक नाम है, उसको सामान्य भी कहते हैं, और आदेश, भेद और विशेष, ये सब समानार्थक नाम है। ओघ से और आदेश यानी सामान्य से और विशेष से, या अभेद से और भेद से, गुणस्थानों की अपेक्षा और मार्गणास्थान, उसके अलग अलग ऐसे ही अर्थ निकलेंगे। ओघ निर्देश और आदेश निर्देश, इस प्रकार से निर्देश दो ही प्रकार का होता है, क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के अवलंबन किए बिना वस्तु स्वरूप के कथन करने के उपाय का अभाव है। जब वस्तु का कथन करना है, या तो अभेद से उसका कथन करेंगे या फिर उसको भेद करके समझाएंगे। तो द्रव्यार्थिक नय ने अभेद से कथन करना, और पर्याय का अर्थ होता है भेद। पर्याय ने वो समय समय की पर्याय, उतना ही पर्याय का अर्थ नहीं है, तो पर्याय ने भेद करके कथन करना, उसको कहेंगे पर्यायार्थिक नय। शंकाकार पूछता है, यदि ऐसा है तो प्रमाण वाक्य का अभाव प्राप्त होता है। उक्त शंका पर धवलाकार कहते हैं, भले ही प्रमाण वाक्य का अभाव हो जावे, क्योंकि गौणता और प्रधानता के बिना वस्तु स्वरूप के कथन करने के उपाय का भी अभाव है। कथन करना है, कथन की बात चल रही ना, वस्तु स्वरूप का कथन करना है, तो पहले भेद करके समझाएंगे, फिर अभेद से भी समझाएंगे, क्योंकि कथन करना है। अथवा प्रमाण से उत्पादित वचन को उपचार से प्रमाण वाक्य कहते हैं। ये प्रमाण के ही भेद है, इसलिए उसको भी प्रमाण कहते हैं। क्योंकि हमने देखा था नए भी ये प्रमाण के भेद है ना, तो ये उसका अंश है, इसलिए उसको भी प्रमाण कह सकते हैं। अब दूसरा यहाँ सूत्र बताएंगे, अभी ओघ से बात चलेगी, ओ ऊपर पढ़ेंगे। ओघेन मिच्छा दिट्ठी केवड़ियम खेतम फोसिदम सव्वलोगो। ओघ से मिथ्या दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, तो सर्वलोक स्पर्श किया है। जिस प्रकार से उद्देश होता है, उसी प्रकार से निर्देश किया जाता है। निर्देश यानी कथन, हमारे उद्देश्य के अनुसार कथन होता है। इस न्याय के अनुसार सर्वप्रथम ओघ का कथन करते हैं, इसलिए सूत्र में पहले ओघ से ऐसा वचन कहा। देखो, हमेशा जब सूत्र हम पढ़ते हैं तो सूत्र में एक एक शब्द क्यों डाला है उसकी चर्चा चलती है, तो ओघ से कहने का प्रयोजन बता दिया, क्योंकि पहले हम ओघ की बात करेंगे तो ओघ से ऐसा लिख दिया। सासादनादि शेष गुणस्थानों के प्रतिषेध करने के लिए मिथ्या दृष्टियों के द्वारा यह वचन कहा, लिखा है ना, ओघ से मिथ्या दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है, या ऊपर लिखा है मिथ्या दृष्टि ही, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा। अब कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, यह पृच्छा सूत्र यानी प्रश्न शास्त्र की प्रमाणता का प्रतिपादन करने के लिए कहा गया है। यह हमने पहले भी देखा था, इसकी चर्चा भी की थी, कितने जीव है पहले आई थी ना बात, तो प्रश्न क्यों पूछा, डायरेक्ट बता देते इतने अनंत है, या यहाँ डायरेक्ट बता देते कि पूरा लोक है। परंतु प्रश्न और फिर उत्तर, तो ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उसका उत्तर आया है, ये बताने के लिए, शास्त्र की प्रमाणता बताने के लिए यहाँ प्रश्नात्मक सूत्र बताया और फिर उसका उत्तर दिया। शंका, क्षेत्रानुयोग द्वार में सर्व मार्गणाओं का आश्रय लेकर सभी गुणस्थानों के वर्तमान काल विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिपादन कर दिया गया है। अभी अभी हमने क्षेत्रानुगम पूर्ण किया, तो उसमें हमने गुणस्थान और मार्गणा स्थानों की अपेक्षा जीव कितने क्षेत्र रोकता है, क्या है, उसकी सब विस्तार से चर्चा की थी। अब पुनः इस स्पर्शनानुयोग द्वार से क्या प्ररूपण किया जाता है, क्योंकि स्पर्शन में हमने अभी देखा था भूतकाल की बात और वर्तमान की भी बता रहे हैं, तो वर्तमान की तो हो चुकी, बताया उन्होंने क्षेत्र में, तो उसी को तो लिया था उसका समाधान। 14 मार्गणा स्थानों का आश्रय लेकर के सभी गुणस्थानों के अतीत काल विशिष्ट क्षेत्र को स्पर्शन कहा गया है। क्षेत्र अनुगम और स्पर्शन अनुगम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो क्षेत्रानुगम में हमने वर्तमान की बात की थी और स्पर्शन अनुगम में उसी जीव ने भूतकाल में कौन सा क्षेत्र व्यापा था उसकी अपेक्षा, उसको हम कहेंगे स्पर्शन, और वो गुणस्थानों की और मार्गणा स्थानों की अपेक्षा से उसमें बात करेंगे। क्षेत्रानुगम में हमने वर्तमान की बात की थी और स्पर्शन अनुगम में भूतकाल में जिस क्षेत्र को उसने व्यापा था, उस जीव ने जहां जहां वो गया था, जहां रहता था, उसकी बात होगी। अतएव यहां उसी का प्ररूपण किया जाता है। शंका, यहां स्पर्शनानुयोग द्वार में वर्तमान काल संबंधी क्षेत्र की प्ररूपणा भी सूत्र निबद्ध ही देखी जाती है, इसलिए स्पर्शन अतीत काल विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिपादन करने वाला नहीं है, किंतु वर्तमान और अतीत काल से विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिपादन करने वाला है। सूत्रकार, ये शंकाकार पूछता है कि कहीं कहीं सूत्रों में अभी वर्तमान जो हमने जो क्षेत्र में देखा था ना कि पूरे लोक में रहता है, लोक के असंख्यात विभाग में जो है वगैरह वगैरह, तो ऐसे सूत्र में भी लिखा देखा जाता है, और आप कहते हो कि अकेले भूतकाल की बात है, यहाँ वर्तमान की नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों की बात हो सकती है, ऐसा उसका कहना है। वर्तमान की और भूतकाल की दोनों को मिलकर स्पर्शन कहते होगे, तो उसका समाधान, यहाँ स्पर्शनानुयोग द्वार में वर्तमान क्षेत्र की प्ररूपणा नहीं की जा रही है, प्ररूपणा तो भूतकाल की ही होगी, किंतु पहले क्षेत्रानुयोग द्वार में प्ररूपित उस वर्तमान क्षेत्र को स्मरण कराकर अतीत काल विशिष्ट क्षेत्र के प्रतिपादनार्थ उसका ग्रहण किया गया है। जहां कहां सूत्र में वर्तमान क्षेत्र की बात समझाई है, तो उसके साथ भूतकाल की कंपेयर करने के लिए कि वर्तमान में अभी वो इतना क्षेत्र रोक रहा है, तो भूतकाल में कितना रोका था, उसका स्मरण कराने के लिए क्षेत्र की बात भी कहेंगे, परंतु सूत्र का प्रयोजन है स्पर्शन संबंधी क्षेत्र बताना, वर्तमान क्षेत्र बताना सूत्र का प्रयोजन नहीं है। अतएव स्पर्शनानुयोग अतीत काल विशिष्ट क्षेत्र का ही प्रतिपादन करने वाला है, यह सिद्ध हुआ ही लगाया उन्होंने। अब जो मिथ्या दृष्टि संबंधी जो सर्वलोक लिखा था, स्पर्शन संबंधी सर्वलोक है, अर्थात संपूर्ण लोक मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा स्पर्श किया गया है, ऐसा कहा गया है, यानी भूतकाल में भी पूरे लोक का स्पर्श हुआ है। यहाँ पर लोक का प्रमाण पहले क्षेत्र प्ररूपणा में बताए गए नियम के अनुसार निकाल लेना चाहिए। वहां तो हमने कैसा निकालना पूरे लोक का प्रमाण, वो तो बहुत विस्तार से समझाया था, अथवा कहकर यहाँ दूसरी और एक भी मेथड बता रहे, अथवा लोक के मध्य को छेद कर, हाँ ऊपर पहले हम श्लोक पढ़ेंगे वो रह गया, मूल मुह सहित मूल मच्छम छेत्तूणध्येन सत्तबकेण हंतूणे गठकदे घनरज्जु होंति लोगमी। लोक के मध्य को छेद कर, अर्थात मध्य लोक से दो विभाग कर, दोनों विभागों के पृथक पृथक मुख सहित मूल के विस्तार को आधा करके पुनः 7 के वर्ग से गुणा करके उन दोनों राशियों को जोड़ देने पर लोक संबंधी घनराजू उत्पन्न होते हैं। अभी इसको समझाते हैं। इस गाथा के अनुसार लोक का प्रमाण निकालना चाहिए। लोक को मध्य से विभक्त करने पर दो भाग हो जाते हैं, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। हमने इसको भी देखा था पहले। ऊपर एक राजू है, ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजू है, मध्य लोक में फिर एक राजू और नीचे 7 राजू, और सर्वत्र दक्षिणोत्तर 7 राजू है और हाइट इसकी 14 राजू है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा काटेंगे, फिर मुंह और भूमि, मुंह ने एक राजू और यहाँ 7 राजू, 8 करेंगे उसका आधा करेंगे, 4 उसका आया है ना, एवरेज 4 आ गए, 4 एवरेज है उसकी विड्थ। तो फिर यहाँ से यहाँ तक 7 राजू गुना दक्षिणोत्तर 7 राजू गुना 4 राजू, 7 × 7 × 4 तो वो 196 आ जाएगी। और ऊपर का निकालना है तो ऊपर का भी निकालते समय यहाँ भी 7 राजू और ऐसा 7 राजू है, और यहाँ मुंह और ये एक है और 5 है, 6 का आधा 3 हो जाते हैं, तो 3 को उससे गुणा करना, तो 7 × 7 × 3 हो जाएगी। वही बात यहाँ लिखिए, देखो लोक को मध्य से विभक्त करने पर दो भाग हो जाता है, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। इनमें से अधोलोक का मुख्य एक राजू और मूल 7 राजू प्रमाण है, अतएव इन दोनों का योग यानी टोटल 8 राजू हुआ। इससे आधे 4 को दो जगह की हमने मिलान किया था ना, इसलिए उसको 2 से भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो 4 आ गए। उसको 7 के वर्ग से गुणा करने पर अधोलोक की हाइट और दक्षिणोत्तर विस्तार, इसलिए 7 × 7 लिया, उससे गुणा करने पर 4 × 49 196 राजू आते हैं, 196 घन राजू कहना पड़ेगा इसको। हाँ, यही अधोलोक के घन राजुओं का प्रमाण है, लिखा है उन्होंने आदि, परंतु ये सिंपल नहीं है, वो घन राजू है। इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक का मुख्य एक राजू और मूल 5 राजू प्रमाण है, दोनों का योग 6 राजू हुआ। इसके आधे 3 को 7 के वर्ग से गुणा करने पर 3 × 49 147 राजू यानी घन राजू आते हैं, यही ऊर्ध्वलोक के घन राजुओं का प्रमाण है। उक्त दोनों प्रमाणों को एकत्रित करने पर 196 + 147 343 लोक संबंधी घन राजुओं का प्रमाण होता है, अथवा 7 राजू प्रमाण चौड़े और 14 राजू प्रमाण लंबे क्षेत्र को स्थापन करके आयाम के, एक कहा नहीं काट देना, कहा नहीं और उसके आगे का दंड, वो सब एक साथ उसको राउंड करके निकाल देना वो शब्द, और वहां के लिखना आयाम के 14 खंड, आयाम यानी लंबाई, उसके 14 खंड करना, और विष्कंभ की अपेक्षा 7 खंड करना। पहले पढ़ेंगे फिर समझाती हूँ। पुनः उक्त लोक के प्रमाण से अधिक क्षेत्र को लेकर उक्त विधि से खंडित करने पर अपने सकल और विकल अवयवों सहित लोक रूप क्षेत्र परिस्फुट होकर दिखाई देता है। पुनः वहां पर बताए गए सूत्र के अनुसार समस्त क्षेत्र खंडों को लाकर मिलाने पर भी वही 343 घनराजु लोक का प्रमाण हो जाता है। पहले हम बीच में खंडित करके उसके क्षेत्र निकाला था, अब अलग रीति से बताते हैं। अभी हमको मालूम है ऊपर भी एक राजू बीच में भी एक राजू, तो ये पूरा एक राजू बाय एक राजू, ये 14 राजू लंबा, और ऐसा सर्वत्र 7 राजू तो विस्तार है ही, तो बीच में से उसको हम काट देंगे ऐसे दोनों, ऐसे लोकाकाश पकड़ के उसके ऐसे बीच में से काट लेंगे, तो अकेले इतना जो क्षेत्र हो उसका घनफल कितना होगा, या उसका ऐसा करते वो खंड ही कर दो डायरेक्ट, ऐसा बताते। तो आयाम के 14 खंड कर दिए, और अभी ऐसा जो फैला है उसके भी ऐसे ही खंड करेंगे, ऐसे एक एक क्यूब निकालेंगे हम इसको, तो इसके ऐसे सात हो जाएंगे, ऐसे 14, तो पूरा ऐसा एक हम निकाल लेंगे चपटा पीस, एक राजू गुना सात राजू और 14 राजू लंबा, तो उसमें कितने ऐसे टुकड़े निकलेंगे? हाँ, क्योंकि ऐसे 14 हैं और ऐसे सात, हर एक के साथ साथ, तो 14 गुना सात 98 हो जाएंगे। उसको अलग स्थापित करेंगे, इसको निकाला। अभी क्या बचा? ये नीचे दो ट्रायंगल रहेंगे, यहाँ का और यहाँ का, और ये ऊपर भी यहाँ इतना रह गया। अभी क्या करेंगे? ये जो पूरा है वो इधर ऐसा उल्टा फिट करेंगे। यहाँ कुछ नहीं और यहाँ नीचे कितना है? ये बाजू तीन है, क्योंकि बीच का एक निकाला था, सात में से बीच का एक राजू निकाला था, तो तीन तीन राजू रह गए और ऊपर एक प्रदेश तीन है। अब इस ट्रायंगल को उल्टा फिट कर दो तो इस तरह से हो जाएगा, तीन राजू बाय सात राजू बाय सात राजू। हाँ, अभी यहाँ तो ये तो उल्टा सुल्टा कुछ है, अभी इसके और दो टुकड़े कर दो ना। अब यहाँ नीचे का यहाँ जो ट्रायंगल वाला पीस यहाँ फिट कर देना और यहाँ ऊपर का यहाँ फिट कर देना उल्टा लाकर। इसकी विड्थ कितनी है? दो राजू, क्योंकि पांच राजू में से बीच वाला एक राजू निकाल दिया था, दो दो राजू बचे थे, तो अभी इसकी कितनी होगी ऊपर वाले? ये दो राजू गुना पूरा सात, हाँ पूरा सात लेना, गुना सात और नीचे तीन गुना सात और बीच वाला कितना निकाल था? 14 गुना सात, यानी 2 गुना सात गुना सात ही निकाला था ना, 14 गुना सात, तो ये भी 98 प्लस 98 और प्लस ये कितने हो जाएंगे? 147। इन तीनों की टोटल करनी है। ये सिंप्लीफाई किया उन्होंने, बीच का क्षेत्र निकाल कर ये जो दोनों बाजू के ट्रायंगल है उल्टे करके एक दूसरे पर फिट कर दो तो इक्वल हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ, तो टोटल 343 गणराजू आ जाएंगे। अभी इस विशेषार्थ को पढ़ेंगे तो आपको समझेगा ब्रदर। उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि पुरुषाकार लोक के आकार में त्रसनाली तथा उसके आगे पीछे त्रसनाली के समान ही जो क्षेत्र है वह सब पूर्व पश्चिम एक राजू चौड़ा, उत्तर दक्षिण सात राजू मोटा, हमने दिखा ना, अभी दिखा वैसा, और ऊपर नीचे 14 राजू लंबा है। इस क्षेत्र को क्षेत्र को लंबाई की ओर से एक एक राजू प्रमाण से खंडित करके पुनः मोटाई की ओर से भी एक एक राजू प्रमाण से खंडित करना चाहिए। तो लंबाई में 14 खंड हो जाएंगे और इसे सात हो जाएंगे। इस प्रकार से उक्त क्षेत्र के एक राजू प्रमाण लंबे चौड़े और मोटे अर्थात घनात्मक खंड 14 गुना 7 98 होते हैं। पुनः लोक प्रमाण में से इस क्षेत्र के यानी इन खंडों के अतिरिक्त जो अवशिष्ट क्षेत्र बचा है उसे लेकर सम विभागों को ऊपर नीचे स्थापन कर, ये सम विभाग हमने देखा ना, अधोलोक का जो ट्रायंगल है ये बाजू का, वो ऐसा उल्टा स्थापन करो तो ये सम को सम के साथ दोनों ट्रायंगल मिलकर एक रेक्टेंगल हो जाता है। हाँ, स्थापन कर पूर्वोक्त प्रमाण से ही एक एक राजू प्रमाण के खंड करना चाहिए, जिसका क्रम इस प्रकार है। मध्य लोक से नीचे अधो भाग के जो शेष दोनों पार्श्ववर्ती दो भाग है, पार्श्व साइड के, उन्हें एक के ऊपर दूसरे को विपर्यास क्रम से रखना चाहिए यानी उल्टा। ऐसा करने पर वह सात राजू प्रमाण लंबा चौड़ा समचतुरस्र क्षेत्र बन जाता है, जिसकी की मोटाई सर्वत्र तीन राजू प्रमाण होती है। अभी हमने देखा कैसे तीन राजू, इसके भी एक एक घन राजू प्रमाण खंड करने पर 7 गुना 7 गुना 3 147 खंड होते हैं। इसी प्रकार से ऊर्ध्वलोक के अवशिष्ट क्षेत्र को ब्रह्मलोक के पास से छिन्न कर देने पर समान माप वाले चार भाग हो जाते हैं। वहां ऊपर एक भाग नहीं, क्योंकि वो तो बीच में बड़ा है ना, यहाँ तो एक साथ ऐसे एक ही ट्रायंगल मिला था, अब यहाँ चार ट्रायंगल हो जाएंगे, फिर इसलिए फिर आधा करके उसके दोनों को एक साथ मिलाना है। चारवा होते। इन्हें क्रमशः विपर्यास क्रम से स्थापित करने पर 7 राजू लंबे, 3.5 राजू चौड़े और 2 राजू मोटे, ऐसे 2 आयत चतुरस्र क्षेत्र हो जाते हैं। या आधे आधे उन्होंने 3.5 बताया, हमने एक साथ लिया था, जिसकी की मोटाई सर्वत्र 2 राजू होगी। इसके भी एक एक घन राजू प्रमाण खंड करने पर 7 × 7 × 2 98 खंड होते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न हुए इन समस्त खंडों को जोड़ देने पर 98 + 147 + 98 343 खंड हो जाते हैं, जो कि प्रत्येक एक एक घनराजु प्रमाण है। अतएव इस प्रकार से भी लोक का प्रमाण 343 घनराजु निकल आता है। ये क्षेत्र कैसा निकाला उसकी बात हो गई। अब कहते हैं, अब यहाँ पर पर्यायार्थिक नए संबंधी प्ररूपणा कहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पदगत मिथ्यादृष्टि जीवों ने अतीत काल और वर्तमान काल की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। विहारवत स्वस्थान और वैक्रिक समुद्घात गत मिथ्यादृष्टि जीवों ने वर्तमान काल में सामान्य लोक आदि तीनों लोकों का असंख्यातवा भाग और तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग स्पर्श किया है, तथा 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहाँ पर अपवर्तना क्षेत्र प्ररूपणा के समान जानना चाहिए। अपवर्तन है उसके जो भागाकार हमने पहले देखे थे। विहार व स्वस्थान और वैक्रियक समुद्घात गत मिथ्यादृष्टि जीवों ने पहले तो अभी वर्तमान काल की बात की उन्होंने, तो अभी अतीत काल में अतीत काल की अपेक्षा देशों का अर्थ देश ऊन यानी कुछ कम, देशों का अर्थ लिखा है ब्रैकेट में कुछ कम, 8/14 राजु क्षेत्र स्पर्श किया है। अब वो कैसा है वो बताएंगे। वह इस प्रकार से लोक नाली के 14 खंड करके मेरु पर्वत के मूल भाग से नीचे के 2 खंडों को और ऊपर के 6 खंडों को एकत्रित करने पर 8/14 भाग हो जाते हैं। अभी हमने देखा था ना, ये 14 भाग हमने आइट के किए थे, नीचे से 2 भाग लेना और ऊपर के 6 लेना। तो 8/14 हो जाते हैं। ये 8/14 राजू तीसरी पृथ्वी के नीचे के 1000 योजनों से हीन प्रमाण होते हैं, इसलिए इन्हें देशों ने कहा है, क्योंकि नीचे ये जो तीसरी पृथ्वी है उसका नीचे 1000 योजन छोड़कर ऊपर को लिया है, क्योंकि नारकियों के बिल वो 1000 योजन वो पूरे पृथ्वी को एंड तक नहीं देते ना, ऊपर होगा बीच में होते हैं, इसलिए नीचे के 1000 छोड़ दे योजन छोड़ दिया। तो ये बात उन्होंने बता दिया। अब अगले गुणस्थानों की बात करते हैं। शासन सम्मादिट्ठि ही केवड़ियम खेतम फोसिदम लोगस्य असंख्य यदि भागो। हाँ, अरविंद भाई कहते हैं देव नीचे आते हैं, तीसरे नरक तक आते हैं, तो उनकी अपेक्षा से ये लिया उन्होंने। विहारवत और वैक्रियक समुद्घात गत लिया है, इनकी अपेक्षा की बात चल रही है और मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है, इसलिए ऊपर के स्वर्गों के वो आते भी नहीं है नीचे, तो 6 राजू ऊपर और 2 राजू नीचे लिया उन्होंने। अब शासन सम्यक दृष्टि की बात चलेगी। शासन सम्मादिट्ठि केवड़ियम खेतम फोसिदम लोगस्य असंख्य यदि भागो। शासन सम्यक दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। क्षेत्रानुयोग द्वार में कहा गया ही यह सूत्र मंदबुद्धि शिष्यों के संभालने के लिए फिर भी कहा गया है, अथवा 14 गुणस्थान से युक्त भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल विशिष्ट क्षेत्रों के पूछने पर उस शिष्य के संदेह विनाशनार्थ भूतकाल और वर्तमान काल इन 2 कालों से विशिष्ट क्षेत्र की प्ररूपणा की जा रही है। यानी दोबारा वो वर्तमान काल के साथ कंपेयर करके बता रहे। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान कॉमा देना यहाँ, वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात वैक्रियक समुद्घात मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, इन पदों को प्राप्त सासादन सम्यक दृष्टि जीवों ने सामान्य लोक आदि चार लोकों का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया है तथा मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहाँ पर कारण पूर्व के समान ही कहना चाहिए। अब आगे ये अगला सूत्र जो है चौथा नंबर का, अठ बारह चौदस भागावा देसुणा। सासादन सम्यक दृष्टि जीवों ने अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग तथा कुछ कम 12/14 भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। इस सूत्र में सासादन सम्यक दृष्टियों ने इस पद की पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति होती है, यानी कंटिन्यूटी उसकी यहाँ पाई जाती है। यह सूत्र अतीत काल संबंधी क्षेत्र के प्रतिपादन करने के लिए आया है। पहले सूत्र में वर्तमान काल की बात की थी जो हमने पहले क्षेत्रानुगम में देखी थी, अब अतीत काल का स्पर्शन यहाँ बता रहे हैं। शंका, यह सूत्र अतीत काल संबंधी क्षेत्र की प्ररूपना के लिए आया है, यह कैसे जाना? समाधान, 8/14 और 12/14 भागों की प्ररूपना अन्यथा बन नहीं सकती। इस अन्यथा अनुपपत्ति से जाना जाता है, कल हमने देखा था अन्यथा अनुपपत्ति ने नॉट अदरवाइज पॉसिबल, उससे जाना जाता है। यहाँ पर अतीत काल संबंधी क्षेत्र का प्रतिपादन करना अभीष्ट है, अभीष्ट है नहीं इष्ट है, उसको हम उसकी बात कर रहे हैं। चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है, देशामर्शक है ना थोड़ा बताने वाला, उसमें से ज्यादा वो डिटेल हमें जानना चाहिए, इसलिए इसकी पर्यायार्थिक नय संबंधी प्ररूपणा पर्यायार्थिक नय वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिए की जाती है। यानी वो कैसा, वो इतना बटे इतना कैसे निकाला उसकी बात करें, वह इस प्रकार है। स्वस्थान स्वस्थान पद को प्राप्त सासादन सम्यक दृष्टियों ने अतीत काल में सामान्य लोक आदि तीन लोकों का असंख्यातवा भाग और तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग स्पर्श किया है तथा ढाई द्वीप से असंख्यात गुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। अब अतीत काल संबंधी स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र के निकालने का विधान कहते हैं वह इस प्रकार है। उसमें से पहले तिर्यंच सासादन सम्यक दृष्टियों के स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र को कहते हैं। त्रस जीव लोक नाली के भीतर ही होते हैं, बाहर नहीं। यहाँ सासादनों की बात है ना, तो पंचेंद्रियों में ही पाया जाएगा। हाँ, तो यहाँ कहते हैं त्रस नाली के भीतर ही त्रस जीव पाए जाते हैं। तो कहते यह कैसे जाना, उसका समाधान, सासादन समय दृष्टि जीवों ने अतीत काल में देशों ने यानी कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया है। इस सूत्र वचन से जाना जाता है कि त्रस जीव लोक नाली के भीतर ही रहते हैं, बाहर नहीं। इसलिए राजू प्रतर के भीतर, राजू प्रतर है ना क्या, राजू स्क्वायर, एक राजू गुना एक राजू, ये राजू प्रतर है, ये लोक नाली भी है ना, एक राजू गुना एक राजू। तो राजू प्रतर के भीतर सर्वत्र सासादन समय दृष्टि जीव संभव है। विशेषता केवल यह है कि त्रस जीवों से विरहित यानी मानुषोत्तर और स्वयंप्रभ पर्वत के मध्यवर्ती असंख्यात समुद्रों में सासादन सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते हैं। ये बीच के समुद्रों में क्यों नहीं होते सासादन वाले? हाँ अशोक भाई, आप कुछ बता सकते हैं बीच में सासादन क्यों नहीं होंगे? देखो द्वीपों में तिर्यंच पाए जाते हैं, समुद्रों में कोई है ही नहीं है, त्रस जीव जीव ही नहीं है जीव ही नहीं है। सासादन की बात चल रही है, त्रस जीवों की बात चल रही है। हाँ, एक केंद्रीय तो जल इटसेल्फ एक केंद्रीय, उसकी बात कहाँ चल रही है? देखो समुद्रों में कोई वहाँ जलचर जीव नहीं रहते, त्रस जीवों की बात चल रही है। हमने देखा था ना बीच के, अभी जो ढाई द्वीप तक तो सब है, मनुष्य क्षेत्र में तो है, उसके बाहर के जितने भी द्वीप है उनमें तो तिर्यंच है, जितने समुद्र है उनमें कोई तिर्यंच नहीं है। अंतिम जो है हमने देखा था स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, तो द्वीप का आउटर हाफ उसमें और समुद्र में वहां तो तिर्यंच जीव है, तो जहां तिर्यंच है उसी में तो सासाधन वाले हो गए, है ना। हम ऐसा सोचते हैं अरे सासाधन क्यों नहीं, उनको क्या सभी समय दृष्टि हो गए क्या, सभी मिथ्या दृष्टि हो गए, वैसा नहीं है। समुद्र में जीव ही नहीं है उसकी बात चल रही। इसको मैं फिर पढ़ती हूँ, देखो क्यों, विशेषता केवल यह है कि सेकंड लाइन, त्रस जीवों से विरहित असंख्यात समुद्रों में सासाधन समय दृष्टि जीव नहीं होते, यानी मानुषोत्तर और स्वयं प्रभु पर्वत के मध्यवर्ती। हमने देखा ना ढाई द्वीप की मर्यादा मानुषोत्तर पर्वत के अंदर है, और यह स्वयंभू रमण के द्वीप के बीचों बीच जो कौन सा है, स्वयं प्रभु पर्वत है। तो मानुषोत्तर और स्वयं प्रभु इनके बीच में जितने समुद्र है उनमें कोई तिर्यंच नहीं होगे। अभी कोई उसमें पटक देवे उसकी बात नहीं चल रही, हाँ हाँ वहाँ कोई रहते नहीं है। यद्यपि आई बात वहाँ वैर भाव रखने वाले व्यंतर देवों के द्वारा हरण करके ले जाए गए जीवों की वहाँ संभावना है, तो क्या व्यंतर देवों के द्वारा मनुष्य भी वहाँ पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? नहीं जा ही नहीं सकते, क्यों, वो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कोई नहीं जा सकते, देव भी नहीं, उनके नहीं ले जा सकते, किंतु वे वहां पर स्वस्थान स्वस्थानस्थ नहीं कहलाते हैं। या हाँ कोई उनको ऊपर से पटक कर वो समुद्र में डाल भी दे तो भी उनका वो स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र नहीं कहलाएगा, या विहारवत भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्वयं उसमें विहार नहीं किया। अभी कोई उसमें डाल दे उसकी बात नहीं है, क्योंकि उस समय वे अच्छा वो विहार कहा है उनको, वे विहार रूप से परिणत हो रहे हैं, यानी कोई उनको उठाकर वहां ले गया है। इस क्षेत्र को तिर्यक लोक के प्रमाण से करने पर, तिर्यक लोक से प्रमाण से करने पर, यानी उसको तिर्यक लोक जो है कितना है, तिर्यक लोक कितना है, हाँ एक राजु गुणा सात राजु गुणा एक लाख योजन उतना है तिर्यक लोक, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक जगत प्रतर को आगे कहे जाने वाले संख्यात रूप प्रमाण से खंडित करके जो लब्ध आवे उसे राजू प्रतर में से निकाल कर, यहां बीच में एक शब्द दो शब्द डालना है, जो शेष रहे उसे, ये यहां एडिशन करना, राजू प्रतर में से निकाल कर जो शेष रहे उसे पुनः संख्यात अंगुलों से गुणा करने पर तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग होकर संख्यात अंगुल बाहल्य वाला जगत प्रतर होता है। उसका प्रमाण कितना है, संख्यात अंगुल जगत प्रतर। हाँ पहले हमने तिर्यक लोक कितना देखा था, एक राजु गुना सात राजु गुना एक लाख योजन, ये तो सात गुना एक सात तो राजू स्क्वेयर आए, राजू स्क्वेयर को हमको जगत प्रतर में ट्रांसफॉर्म करना है तो 49 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 49 से तो नीचे सात आए, तो एक लाख का सातवां भाग इतने योजन जगत प्रतर, यानी इतने योजन गुना जगत प्रतर, ये संख्या आई थी तिर्यक लोक की। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये जो क्षेत्र अभी निकाला ना बीच वाले समुद्र को छोड़कर जो क्षेत्र निकला उसका, तो वो सब खंडित करके कितना होगा, तो तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग होगा, यानी संख्यात अंगुल गुणा जगत प्रतर इतना होगा। ये तिर्यंच की अपेक्षा बता दी। अब सासाधन समय दृष्टि ज्योतिषी देवों के स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र को कहते हैं, वह इस प्रकार है, जम्बू द्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य हैं। लवण समुद्र में 4 चंद्र और 4 सूर्य हैं। घातकी खंड में पूर्व पृथक पृथक 12 चंद्र और 12 सूर्य हैं। और कालोदक समुद्र में 42 चंद्र और 42 सूर्य हैं। पुष्कर द्वीपार्ध में 72 चंद्र और 72 सूर्य हैं। मानुषोत्तर शैल से शैल यानी पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत के बाहरी पंक्ति यानी वलय में 144 चंद्र और इतने ही सूर्य हैं। इससे आगे 4 संख्या को प्रक्षेप करके यानी ऐड करके अर्थात 4-4 बढ़ाते हुए बाहरी 8वीं पंक्ति आने तक ले जाना चाहिए। इसी का विशेषार्थ फिर बताते देखें। पुष्करार्ध द्वीप से 50,000 योजन आगे जाकर ज्योतिर्मंडल की प्रथम पंक्ति या वलय है। वहां पर चंद्र और सूर्य की संख्या 144-144 है। उससे आगे 1,00,000 योजन आगे आगे जाकर 7 वलय और है जिन पर की चंद्र और सूर्यों की संख्या 4-4 बढ़ती जाती है। अर्थात वहां पर क्रमशः 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172 चंद्र व इतने ही सूर्यों की संख्या हो जाती है। इस प्रकार के वलय स्वयंभू रमण समुद्र तक अवस्थित है। इससे आगे के समुद्र की भीतरी पंक्ति में 288 चंद्र व इतने ही सूर्य हैं। इससे आगे प्रत्येक वलय पर 4-4 चंद्र और सूर्य की संख्या यहाँ की बाहरी पंक्ति आने तक बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए। इस प्रकार से स्वयंभू रमण समुद्र तक चंद्र और सूर्य की संख्या बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए कहा भी है। अब गाथा कहते हैं। चंदा इच्च गहे हिम चेवम नखत तारुवे हिम दुगुण दुगुणे हिणी नंतरे दुवग्गो तिरिय लोगो। चंद्र आदित्य, आदित्य ने सूर्य, ग्रह नक्षत्र और ताराओं की दूनी दूनी संख्याओं से निरंतर तिर्यग लोक द्विवर्गात्मक है। द्विवर्ग, द्वि का वर्ग 4 है ना, द्विवर्गात्मक यानी 4। ये सर्व चंद्र या सूर्य विमान इकट्ठे मिलाने पर संख्यात प्रतरांगुलों से जगत प्रतर में भाग देने पर 1 भाग प्रमाण विमान होते हैं। विमान कितने उसकी बात है। जगत प्रतर डिवाइडेड बाय संख्यात प्रतरांगुल। पुनः इन्हें ऊपर गाथा है। 88 च गहा 28 तुहुंति नखत्ता एगससि परिवारो इत्तो ताराण उच्छामी छावट्ठि च सहस्रम नवयसदं पंचसत्तरीय होन्ति एयससि परिवारो ताराणं कोडि कोडियो। एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य के अतिरिक्त 88 ग्रह और 28 नक्षत्र होते हैं तथा ताराओं का प्रमाण आगे कहते हैं। एक चंद्र के परिवार में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। अपने यहाँ सब ये संख्या निश्चित है ना। और अभी हमारे शास्त्रज्ञ तो जान नहीं सके हैं, हमें तो लगता है हमने बहुत तरक्की की, इसीलिए उनको संशोधक कहते जिसका शोध कभी पूरा नहीं होता। और हमारे तो ये बातें सर्वज्ञ ने जानी हुई है, तो हमारा शोध नहीं पूरा हुआ है इसलिए हमें बहुत सारी बातें मालूम नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है ये सब ये क्या पुराने की बातें, ये सब झूठी है, कुछ ना कुछ लिख दिया है ना। इन ताराओं से तथा चंद्र सूर्य ग्रह और नक्षत्रों से 5 स्थान पर अवस्थित विमान संख्या को परिपाटी क्रम से गुणित कर मिला देने पर ज्योतिषी देवों के सर्व विमान हो जाते हैं। विशेषार्थ, अभी पूर्व में जो चंद्र बिंबों की संख्या निकाल आए हैं, उसे 5 स्थानों पर स्थापित कर देना चाहिए। पुनः चूंकि एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और अभी बताए गए प्रमाण वाले तारे होते, अभी बताए ना 66,975 कोड़ा कोड़ी, इसलिए इनसे क्रमशः 5 स्थानों पर अवस्थित चंद्र संख्या को गुणित करने पर उनका प्रमाण इस प्रकार आ जाता है। देखो, चंद्र संख्या 1 है, सूर्य संख्या 1, ग्रह संख्या 88, यानी उसको गुणा गुणा करना उससे, और नक्षत्र संख्या 28, और तारों की संख्या 66,975 कोड़ा कोड़ी, ये 5 स्थान बताए उन्होंने, यानी चंद्र संख्या को इससे गुणित करना। अब तिर्यक लोक में अवस्थित सपरिवार सकल चंद्रों के प्रमाण को निकालने का विधान कहते हैं। ये तो उसका परिवार हुआ, यह हमेशा चंद्र का परिवार कहा जाता है, चंद्रमंडल या चंद्र परिवार कहेंगे। तो जितने चंद्र है उनके परिवार निकालेंगे अभी। तो तिर्यक लोक में अवस्थित, अवस्थित यानी वहां रहने वाले सपरिवार सकल चंद्रों के प्रमाण को निकालने का विधान कहते हैं, वह इस प्रकार है। जम्बू द्वीप आदि 3 द्वीप और लवण समुद्र आदि 2 समुद्र, इन 5 द्वीप समुद्रों को छोड़कर तृतीय समुद्र को आदि करके, देखो पहला समुद्र कौन सा है, लवण समुद्र, और दूसरा कालोदरी, तो तीसरे समुद्र से लेकर ये बात चल रही, तृतीय समुद्र को आदि करके स्वयंभू रमण समुद्र आने तक इनके विमानों की संख्या निकालने की प्रक्रिया पहले कहते हैं। तृतीय समुद्र में गच्छ का प्रमाण 32, चतुर्थ द्वीप में गच्छ का प्रमाण 64, इससे आगे के समुद्र में गच्छ का प्रमाण 128 होता है, दुगुना दुगुना होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर दूने दूने क्रम से गच्छ स्वयंभू रमण समुद्र तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब इन गच्छों से पृथक पृथक गुण्यमान यानी जिसको गुणा करना है, गुणा की जाने वाली राशियों की प्ररूपणा करते हैं। तृतीय समुद्र में गुण्यमान राशि 288 है, उससे ऊपरी द्वीप में गुण्यमान राशि इससे दूनी यानी 576 है। इस प्रकार दूने दूने क्रम से गुण्यमान राशियां स्वयंभू रमण समुद्र प्राप्त होने तक दूनी होती हुई चली जाती है, जैसे 278, फिर 576, 1152, 2304, 4608, 9216, 18432 इत्यादि, ये सब गुण्यमान राशियां होंगी तीसरे समुद्र से, एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप उसकी। अब 288 से सभी गुण्यमान राशियों को अपवर्तित कर लब्ध राशि से अपने अपने गच्छों को गुणित करके 288 को ही सर्व गच्छों की गुण्यमान राशि करनी चाहिए। ऐसा करने पर सर्व गच्छ परस्पर की अपेक्षा से चतुर्गुण क्रम से अवस्थित हो जाती है। ये जो राशियां निकाली हमने, क्या कहते हैं, सभी जो गुण्यमान राशियां हैं उसको 288 से अपवर्तन करना है और अपने अपने गच्छों को गुणित करना है। 288 भाग देना और अपने अपने गच्छे से गुणित करना। तो उसका उदाहरण देके समझाते हैं। तो पहली राशि हमने देखी थी 288 डिवाइडेड बाय, वो करेक्शन करना, 28 को 88 करना, 288 चाहिए वहां, यहां भी ऊपर नीचे दोनों जगह, और जहां अगली दो संख्या लिखी है वहां भी छेद में 228 हुआ है, उसको भी 288 करना। देखो अभी ये पहली संख्या 288 हमने देखी, 288 को 288 का भाग देना, एक संख्या आएगी, और गच्छ 32 से गुणा करेंगे तो 32 होगा। अगली संख्या 576 थी, उसको 288 का भाग देंगे तो 2 आएगी, और 2 को गच्छ 64 से गुणा करेंगे तो 128 आ गए। ये 4 गुणा हुआ ना तो जो फाइनल रिजल्ट वो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा होगा। ऊपर लिखा था ना चतुर्गुण क्रम से अवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर प्रथम गच्छ 32 से द्वितीय गच्छ 128 चौगुणा हो गया है, इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। अब 4 को आदि करके 4-4 के उत्तर क्रम से जो संकलन धन प्राप्त होता है उसके निकालने पर पहले के गच्छों से इस समय के गच्छ 1 कम होते हैं, क्योंकि दुगुने हुए स्थान पर पहले के समुद्र या द्वीप के प्रथम वलय के प्रमाण से अगले द्वीप या समुद्र के चाहिए, द्वीप का समुद्र के नहीं, द्वीप या समुद्र के, वो द्वीप का वाला का निकाल देना, और द्वीप या समुद्र के प्रथम वलय का प्रमाण दूना हो जाता है, उसमें 4 रूप की वृद्धि का अभाव है। इन गच्छों से गुणा किए जाने वाले मध्यम धन ने एवरेज 64 को आदि करके दुगुण दुगुण क्रम से स्वयंभू रमण समुद्र तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। अभी इसी का फिर पूरा ही विशेषार्थ करके समझा रहे हैं। गच्छ की मध्य संख्या पर जो वृद्धि का प्रमाण आता है उसे मध्यम धन कहते हैं, हमने देखा है इसको एवरेज कहेंगे। वृद्धि होते 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 जो जितना गच्छ है, पहले में थोड़ी वृद्धि हुई, फाइनल में ज़्यादा हुई, तो सेंटर वाले में कितनी हुई, तो उसको हम एवरेज निकाल सकते हैं। यह धन उत्तरोत्तर दुगुण रूप से बढ़ने वाले गच्छों में दुगुना होता जाता है। तृतीय समुद्र का गच्छ 32 है, प्रथम स्थान पर तो 4 की वृद्धि होती नहीं है, अतएव उसे छोड़कर जो शेष 31 स्थान बचते हैं उनमें 16वां स्थान मध्यम रहता है। टोटल 32 है, पहले वृद्धि तो दूसरे से शुरू होगी ना, 32 में तो 31 रहे वृद्धि वाले स्थान, तो उसमें जो बीच वाला 16वां है तो 16वां स्थान मध्यम है, और उसकी वृद्धि का प्रमाण 64 होता है। जैसे देखो पहले वृद्धि का स्थान बताया, पहले में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 12, चौथे में 16, पांचवें में 20, छठे में 24, सातवें में 28, आठवें में 32, नौवें में 36, दसवें में 40, ग्यारहवें में 44, बारहवें में 48, तेरहवें में 52, चौदहवें में 56, पंद्रहवें में 60 और 16वें में 64। नीचे लिखा है अभी ऐसा उल्टे क्रम से, वो बीच वाला है इसलिए सेंटर में लिखा, राइट साइड में। अभी राइट से लेफ्ट तक पढ़ेंगे, 17 में 68, 18वें में 72, 19वें में 76, 20वें में 80, 21वें में 84, 22वें में 88, 23वें में 92, 24वें में 96, 25वें में 100, 26वें में 104, 27वें 108, 28वें 112, 29वें 116, 30वें 120 और 31वें 124। वो सेंटर का निकालने के लिए वो 16वें वाला अलग निकाल के दिखाया उन्होंने, 16वें में 64 होता है। इस क्रम से गच्छ के मध्यवर्ती 16वें स्थान पर वृद्धि का प्रमाण 64 आता है। इसलिए तृतीय समुद्र संबंधी मध्यम धन 64 है। मध्यम धन कहो या एवरेज करो या सेंटर वाले गच्छ का कितना है उसको ये मध्यम धन कहते हैं। इसी प्रकार आगे के द्वीप का गच्छ 64 होने से उसका मध्यम धन 128 होगा, क्योंकि गच्छ दुगुना है तो मध्यम धन भी दुगुना हो जाता है। जो अपने पूर्ववर्ती मध्यम धन 64 के प्रमाण से दुगुना होता है, इस प्रकार आगे आगे के द्वीप और समुद्रों का मध्यम धन दुगुण प्रमाण से बढ़ता जाता है। पुनः गच्छों के समीकरण के लिए सभी गच्छों में एक एक रूप की हानि करनी चाहिए, रूप यानी संख्या, एक की हानि करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। ऐसा करके 64 रूपों से मध्यम धनों को अपवर्तित कर लब्ध राशि से अपने अपने गच्छों को गुणा करके 64 संख्या को सर्व गच्छों की गुण्यमान राशि रूप से स्थापित करनी चाहिए, यानी 64 से उसको गुणा करना चाहिए। यानी पहले जो अपना अपना मध्यम धन है उसको 64 से भाग देना और अपने अपने गच्छ से गुणा करना और फिर 64 से सभी को गुणा करना। ऐसा करने पर बढ़ी हुई राशि का प्रमाण कहते हैं। एक रूप को आदि करके एक एक गच्छ पर दुगुण दुगुण क्रम से स्वयंभू रमण समुद्र तक गच्छ राशि बढ़ती हुई चली जाती है। अब इसी को फिर उन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाया। मध्यम धन 64, पहले हमने देखा था ना मध्यम धन कैसे निकाल के उन्होंने दिखाया था। अब 64 को 64 का भाग देना और पहला गच्छ उसमें से एक घाटी करना, हमने देखा था ना गच्छ में से एक रूप की हानि यानी एक माइनस करना, तो 31 से गुणा करेंगे और फिर उसको 64 का गुणा करेंगे। गुण्यमान कहा था उसको 64 को, यानी उससे गुणा करना, तो 1984 उसका उत्तर धन आता है, अर्थात कुल वृद्धि का प्रमाण आता है। एक देखो एवरेज कितनी वृद्धि हुई 16वें पॉइंट पर 64, बरोबर, और कितने बार वृद्धि हुई 31 बार हुई, तो 64/64 डिवाइड किया, 31 से गुणा किया और फिर 64 से उसको गुणा किया, तो 1984 टोटल वृद्धि आई। उत्तर धन का अर्थ होता है चय धन या उत्तर धन भी कहते हैं, टोटल वृद्धि। चय कहो उत्तर कहो और क्या क्या शब्द, हमने चार शब्द देखे थे, प्रचय और विशेष, यानी जो डिफरेंस, जो वृद्धि का जो प्रति पद यानी प्रति गच्छ जो वृद्धि है उसको यहाँ उत्तर या चय कहते हैं, और सभी चयों की टोटल टोटल वृद्धि कितनी हुई उसको चय धन या उत्तर धन कहते हैं, यानी कुल वृद्धि का प्रमाण। इस उत्तर धन को 288×32 92 से 16 में मिला देने से तृतीय समुद्र संबंधी समस्त चंद्रों का प्रमाण हो जाता है। ये सर्वधन बताया उन्होंने 9216, यानी बिना वृद्धि का उन्होंने बताया था, बेस इतना लिया था और टोटल वृद्धि भी बता दी कितनी होती है। तो सर्वधन यानी जो टोटल है वो 11,200 आ गई। अब चतुर्थ द्वीप पर बताते हैं। तृतीय तो समुद्र था, चौथा तो द्वीप है, वही फॉर्मूला यहाँ भी फिट करेंगे। देखो वहाँ 128 को 64 से भाग दिया और यहाँ का गच्छा है 64, उसमें से एक कम किया तो 63 हो गए और यहाँ अपना जो एवरेज जो मध्यम धन है वो 64 ही था, उससे गुणा करेंगे तो 8,064 उत्तर धन ने टोटल वृद्धि आई। टोटल वृद्धि आई परंतु बेसिक कितना था उसमें वो ऐड करना पड़ेगा, तो उस उत्तर धन को 576×64 ये जो 36,864 में मिला देने से चतुर्थ द्वीप संबंधी समस्त चंद्रों का प्रमाण हो जाता है, ये 44,928 सर्वधन हो जाएगा। देखो यह पहले हमने दिखा रहा था, देखो 576 यह पेज नंबर निकालना, पहला वाला 153 पेज निकालना, उससे पहले 152 के नीचे की तीन लाइन से हम फिर पढ़ेंगे। देखो अब तिर्यक लोक में अवस्थित सपरिवार सकल चंद्रों के प्रमाण को निकालने का विधान वो कैसा है। जम्बू द्वीप आदि तीन द्वीप और लवण समुद्र आदि दो समुद्र, इन पांच द्वीप समुद्रों को छोड़कर, अभी आगे कितने कितने चंद्र है वो उसकी बात करेंगे, तृतीय समुद्र को आदि करके स्वयंभू रमण समुद्र आने तक इनके विमानों की संख्या निकालने की प्रक्रिया कहते हैं, उनके कितने विमान हैं उसको बताएंगे। तो तृतीय समुद्र में गच्छ का प्रमाण 32 वो उन्होंने बता दिया, चतुर्थ द्वीप में गच्छ का प्रमाण 64 वो ऐसे आगे डबल डबल गच्छ हो जाता है। देखो इस प्रकार उत्तरोत्तर दुने दुने क्रम से गच्छ स्वयंभू रमण समुद्र तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब इन गच्छों से पृथक पृथक गुण्यमान यानी गुणा करने वाली जो राशियों की प्ररूपणा करते हैं तो तृतीय समुद्र में गुण्यमान राशि 288 है और आगे आगे वो डबल डबल हो जाती है। तो तृतीय समुद्र के लिए 288, चौथा जो द्वीप है उसके लिए 576, इस तरह से डबल डबल होते। ये 576 यहाँ लिया और 64 तो उसके अभी हमने देखा था, वो उसका गच्छ जो है वो 64 है। अब उसके आगे किस बात करेंगे, यानी चतुर्थ द्वीप हुआ, पांचवा समुद्र है, यहाँ 64 लिया था हमने गच्छ, अब उसका गच्छ भी 128 हो जाएगा। 128 में से कम करेंगे तो 127 हो जाएगा। तो 256 हमने देखा था ना, पहले 64 था, 128 हुआ, ये भी अभी 256 हुआ, बढ़ते चला गया। 256 को 64 का भाग दिया और गच्छ में से एक कम करके गुणा किया 127 से, और फिर 64 तो अपना है ही, उससे गुणा किया तो 32,512 उत्तर धन ने टोटल वृद्धि आई। इस उत्तर धन को 1152 गुणा 128, ये पहले हमने देखा था, देखो 576 से 1112 उससे डबल हुआ। हाँ तो गच्छ को उससे गुणा करना है तो 1,47,456 में मिला देने से चतुर्थ समुद्र संबंधी, यानी टोटली इसका पांचवा नंबर है परंतु चतुर्थ द्वीप और चतुर्थ समुद्र ऐसा लिया उन्होंने, समस्त चंद्रों का प्रमाण हो जाता है। पहले तृतीय समुद्र लिया, फिर चतुर्थ द्वीप लिया, फिर चतुर्थ समुद्र, इस तरह से एक द्वीप एक समुद्र है ना, उसके लिए उसको चतुर्थ समुद्र का उसको। क्या कहते हैं
हाँ,
हाँ हाँ वो तो आता है ना, वो तो डबल डबल होते जाता है, गच्छ है वो इसका, इसका 128 तो गच्छ ही है ना, हाँ वो डबल होता जाता है। तो वो दोनों की टोटल करेंगे तो 1,79,968 सर्वधन हो गए। सर्वधन का अर्थ होता है टोटल, पहले जब हम उत्तरधन कहते तो वृद्धि का टोटल वृद्धि, और फिर जो वहाँ का बेसिक जो है गच्छ के प्रमाण, हाँ उसको वो ऐड कर देना। इसी क्रम से आगे के प्रत्येक द्वीप और समुद्र का स्वयंभू रमण समुद्र तक उत्तर धन एवं सर्वधन निकालते जाना चाहिए। उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया तभी वो ऐसे असंख्यात है तो करते बैठो कहते हैं। अब इस प्रकार से अवस्थित संकलनों के निकालने के प्रकार को कहते हैं। छह रूप अधिक जम्बू द्वीप के अर्धच्छेदों से परिहीन राजू के अर्धच्छेदों को गच्छ राशि बना करके यदि संकलन राशि निकाली जाती है तो ज्योतिष का जीव राशि नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसा करने पर जगत प्रतर का 256 सुचंगुलों के वर्ग प्रमाण भागहार नहीं उत्पन्न होता है। क्या कहते हैं, ज्योतिष की राशि कितनी है, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय 256 सुचंगुलों का वर्ग, ये ज्योतिष राशि है। ये दो आड़ी लाइन है नहीं, जगत प्रतर हमने पहले देखा था ना, लोक के लिए 3 आड़ी लाइन, जगत प्रतर के लिए 2 आड़ी लाइन और जगत श्रेणी के लिए 1 आड़ी लाइन, ऐसे लिखने की पद्धति है संदृष्टि में। तो ये जो ज्योतिषियों की संख्या है जगत प्रतर डिवाइडेड बाय 256 सूचंगुल का वर्ग, इसी को संख्यात प्रतरांगुल कहा था, आपको याद होगा तो 256 का वर्ग संख्यात में है ना, पनट्टी है, और सूचंगुल का वर्ग प्रतरांगुल है। तो ये जो जो कुछ बताएंगे अभी उसको कल ही देखना पड़ेगा, अभी तो समय हो गया अपना, कल फिर दोबारा यहाँ से लेते हैं। जावाणी